अब कोई मेडिकल कॉलेज में दाखला लेते हैं तो शुरू में डॉक्टर साहब, तखसस में दाखला लिया तो घर वाले लोग मुफ्ती साहब, दरसे यहाँ तक कि दरसे नामी में दाखला लेते हैं तो उसको भी मुफ्ती साहब बोलना शुरू कर दें, कुछ लोग बोलते हैं कुछ वो अपने आप को मुफ्ती समझना शुरू कर देता है। तो अब बिलखसूस मुफ्ती, और ये अक्सर ज़्यादा का यही होता है कि मुफ्ती बनेगा ना, दरसे नामी का एंड जो अक्सर ये तलबा की ख्वाहिश होती है। तो अब इसके बारे में फरमाया कि अगर कोई वाकई मुफ्ती बनना चाहता है और दरसे नामी में दाखिल हो चुका है तो वो किन उमूर का इंतजाम करे कि फिर वो आगे जाकर ही मुफ्ती बन सके, शुरू से ही उसका कोई ऐसा सिलसिला हो।
अच्छा, बात तो ये है कि हम यानी बात सवाल ये करते होते हैं कि हम किस तरह दरसे निजामी करें कि जब हम फारिग हों तो हम मुफ्ती बन जाएं, यानी फरागत के साथ ही फाजिल दरसे निजामी व मुफ्ती करार पा जाएं। ये जो है ना, ये तो तकरीबन नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो आप लिख ले, आपको कोई आदमी जितना मर्जी जोर लगा ले, ये तकरीबन तकरीबन नामुमकिनात में से है कि आदमी दरसे निजामी से फारिग हो आजकल के दरसे 8 साल दरसे निजामी से और वो मुफ्ती बन जाए, ऐसा नहीं होता। दूसरी बात ये है कि आप वो क्या काम करें कि जब आप दरसे निजामी से फारिग हो तो आपके लिए मुफ्ती बनना आसान हो जाए। उसमें यूं कह ले, उसमें कई कई चीजें हैं। उसमें सबसे पहली बात तो मैं ये अर्ज करूंगा कि आपकी अरबी इबारत, तर्जमा और तफहीम, अरबी इबारत, तर्जमा और तफहीम यानी समझाने का मलका, ये कितना है। अगर आपकी अरबी इबारत ऐसी है जैसे आपकी उर्दू इबारत, फिर तो आपके लिए मुफ्ती बनना आसान है। और अगर आपकी अरबी इबारत ऐसी है कि हर तीसरी लाइन के लिए आप मुंजिद खोल के बैठते हैं या किसी से मशवरा करते हैं या उस पर तहरी करते हैं कि सही यार मतलब क्या क्या हो सकता है और सही मतलब क्या होगा, अगर अरबी ऐसी है तो फिर मुफ्ती मुफ्ती बनने वाला चक्कर जो है ना वो बिल्कुल आप साइड में कर दें, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अरबी इबारत का आना, इसका तर्जमा अच्छा आना, तफहीम का मलका होना, ये मुफ्ती बनने के लिए ऐसे है जैसे घर के लिए जमीन। आप बोले मुझे घर बनाना है, मैं आपसे पूछूंगा कि हुजूर आपकी जमीन कहां जहां आपने घर बनाया, जमीन तो नहीं है लेकिन घर बनाना है मैंने, तो फिर हवा के अंदर ही बनेगा। इसी तरीके से जिसने फतवे के अंदर आना, मुफ्ती बनना है, उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि उसकी अरबी इबारत बेहतरीन किस्म की होनी चाहिए। अरबी इबारत में कमजोरी है, वो कभी मुफ्ती नहीं बन सकता कि अरबी इबारत के मुफ्ती बनने के अंदर अरबी इबारत तो बिल्कुल इब्तदाई दर्जा है, इससे आगे की तो पता नहीं कितनी चीजें होती हैं। मफहूम मुखालिफ से इस्तदलाल, फहवाए कलाम से इस्तदलाल, फहमे जो है वो फकी के ऊपर जो चीजें छोड़ी हुई हैं उनसे इस्तदलाल, ये इतनी चीजें होती हैं कि अरबी इबारत तो एक बिल्कुल इब्तदाई जरिया है। तो अब जिसकी अरबी इबारत ही कमजोर है वो बोले कि मुझे मुफ्ती बनना है, कभी मुफ्ती नहीं बन सकता। बहारे शरीयत आलिम बनाने वाली किताब है और मुफ्ती के लिए मुआविन किताब है, मुफ्ती बनाने वाली किताब नहीं। उसके तकाजे और हैं, उसकी डिमांड्स और हैं, मुफ्ती बनने के लिए मुताला ही और तरह का चाहिए होता है। तो लिहाजा पहले नंबर पर अरबी इबारत है। अच्छा, दूसरे नंबर पर हमारे जमाने में मुफ्ती सिर्फ फिक का मुफ्ती नहीं होता, वो अकीदे का भी मुफ्ती होता है क्योंकि उससे अकीदे भी पूछे जाते हैं, वो हदीस का भी मुफ्ती होता है कि उसको हदीस पर भी सवाल किए जाते हैं, वो तसव्वुफ का भी मुफ्ती होता है कि उससे तसव्वुफ के मसाइल भी पूछे जाते हैं। लिहाजा कुरान और हदीस के अच्छे मुताले के बगैर मुफ्ती बनने का कोई तसव्वुर नहीं। तो अब कुरान और हदीस का मुताला बेहतरीन अंदाज में किया जाए ताकि आप अच्छे मुफ्ती बन सके। अगर ये मुताला नहीं और आप बोले मैं फिक पढ़ के ही सिर्फ मुफ्ती बन जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। फिक पढ़ के सिर्फ मुफ्ती नहीं बनेगा, कुरान और हदीस उसके साथ ऐड होना जरूरी है। अच्छा, तीसरी बात, मसाइल पूछने का जौक। एक आदमी ने दरसे निजामी में कभी कोई मसला पूछा ही नहीं और वो कहता है कि फारिग होने के बाद मैं मुफ्ती बन जाऊं, ऐसा होना मुश्किल है। जिस आदमी का फिकही जौक होता है, वो फिकही जौक जाहिर होता है किन चीजों से, कि उसके हाथ में आमतौर पर फिकही किताबें होंगी, फिकही मुजल्लात होंगे, फिकही रसायल होंगे, फिक के मसाइल के अंदर वो गौर खोज करता होगा, उस्तादों से फिकी मसाइल पूछता होगा, अपने क्लास फेलो के साथ वो फिकी मसाइल पर गुफ्तगू करता होगा। ये चीजें हैं जो बताती हैं कि इसके अंदर फिकी जौक है और इसे मसाइल पूछने का शौक है। तो अगर मसाइल पूछने का शौक नहीं और पूरा दरसे निजामी गुजर जाए, अब ये अपनी शर्म की वजह से मसला ना पूछे या जो है अपने जौक ही की वजह से मसला ना पूछे, तो फिर इसका फतवे की तरफ आना मुश्किल है। फिर इसके साथ एक और अहम चीज, वो वही है जो मैंने पहले अर्ज की है कि बगैर किसी मुफ्ती की सोहबत के یا کسی ماہر فقہ کی صحبت کے آدمی مفتی نہیں بن سکتا. تو اب دوران تعلیم بھی آدمی کا تھوڑا سا ذوق, جیسے ایک استاد جو فقہ پڑھانے والا ہے یا فقہ کا ماہر ہے یا دارالافتاء سے تعلق رکھتا ہے اور جامعہ میں تدریس کرتا ہے, تو تھوڑا سا اس سے تعلق زیادہ ہو, مسائل پوچھنے کا اس سے ذرا ذہن زیادہ ہو, یہ چیزیں ہوں گی تو آدمی کے اندر فقہ کا بیج جو ہے وہ بویا جانا شروع ہو جائے گا. پھر ایک اور چیز ہوتی ہے جس کی طرف عام طور پہ کم توجہ دیتے ہیں, درس نظامی پڑھ لیتے ہیں, تخصص بھی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد بھی مفتی نہیں بن پاتے, وہ کیا ہے؟ وہ دو چیزیں. اعلی حضرت علی رحمہ نے دو چیزوں کا بتصریح بیان فرمایا, ایک ہے بیدار مغزی اور ایک ہے صاف ذہنی. بیدار مغزی اور صاف ذہنی. بیدار مغزی یہ ہوتی ہے کہ آدمی کا ذہن جو ہے وہ ایسا بیدار ہوتا ہے کہ اس سے یعنی فوری طور پہ بات کو پک کرنے کا جو اس کے اندر ملکہ ہوتا ہے نا, یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. بیدار مغزی یہ ہوتی کہ بات کا پورا وہ سیاق و سباق سمجھ لے کہ بات کیا کہی جا رہی ہے, اصل مسئلہ کیا پوچھا جا رہا ہے, اس مسئلہ پوچھنے کے پیچھے جو ہے وہ کیا چیزیں موجود ہیں, ان چیزوں کو سمجھ لینا, ایسا وسیع ذہن. اور صاف ذہنی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ جزیہ جمع کر کے بیٹھا یار اب کیا کروں, اناڑی مستری کی طرح کے سارا سامان جمع کر لیا, اب یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یار پہلے سیمنٹ میں وہ اس کو پانی ڈال کے بناؤں یا پہلے میں اینٹیں رکھوں. تو اس انداز کے اندر نہ ہو, صاف ذہنی کہ اس نے جزیات جمع کیے تو کوئی نتیجہ بھی نکلتا. میں نے خود دیکھا ہے تخصص کرنے والے کئی طلبہ, ان کو بولیں نا اس مسئلے کا حل نکالیں, وہ سارے جزیات جمع کر لیں گے, جزیات جمع کر کے بولیں کہ استاد جزیات تو جمع کر لیا اب نتیجہ سمجھ نہیں آ رہا. تو یہ ذہن صاف نہیں ہوتا, ذہن کے اندر ایک گنجلک پن ہوتا ہے. تو یہ چیز جب تک ہے جس آدمی کا ایسا ذہن ہے, بات اخذ کرنے کا ملکہ نہیں ہے, بات کو سلجھانے کا ملکہ نہیں ہے, یہ آدمی افتاء کے اندر اس کا آنا مشکل ہے. عربی عبارت اچھی کرے, مسائل پوچھنے کا ذوق رکھے, فقہی کتابوں کا مطالعہ کرے, فقہی تحقیقات کا مطالعہ کرے, استادوں سے سوالات پوچھے, کسی ماہر فن کی صحبت اختیار کرے, اور اس کے ساتھ صاف ذہن, بیدار مغزی اور صاف ذہنی, یہ سات چیزیں اگر آپ کو حاصل ہیں تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ درس نظامی کے بعد آپ کے لیے افتاء کا مفتی بننا آسان ہے, افتاء کی فیلڈ آسان ہے. ورنہ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر اس شعبے کی طرف نہ آئیں, پھر کوئی دوسرا شعبہ اختیار کریں.